जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय।
हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना फोन या स्विच ऑफ करें या उसे वाइब्रेट मोड पर रखें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नौवा स्कंद चौथा अध्याय। दुर्वास मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक संख्या 69 उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः तु कुरुते शिवम् उपायं कथयिष्यामि विप्राशृणुष्व तत् अयं यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम्
माताजी
उपायं कथयिष्यामि विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम् कथयिष्यामि विप्राशिणुष्वतात् अयम् ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम् प्रहितं तेजः कुरुते शिवम्।
उपायम्, इस भयावह स्थिति से बचने का उपाय। कथयिष्यामि, तुम्हें बतलाऊंगा, तव इस संकट से तुम्हारे उद्धार का। विप्र, हे ब्राह्मण, श्रीणुष्व मुझसे सुनो, तत् जो मैं कहूँ, अयम तुम्हारे द्वारा की गई कार्यवाही ही निस्संदेह आत्म अभिचार है, स्वयं से ईर्ष्या, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन गया है। ते तुम्हारे लिए यतः जिसके कारण तम उसको अम्बरीश महाराज को याहि तुरंत जाओ, मा चिरम एक क्षण भी देरी न करो। साधुषु भक्तों को प्रहितम प्रयुक्त तेजः शक्ति प्रहर्तुः कर्ता का, कुरुते कर्ता है, अशिवम अमंगल। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता की को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता विषयी को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। तात्पर्य, वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बनता रहा है, चाहे वह अभक्त उसका पिता ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं अपितु हिरण्यकश्यपु के लिए घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की, उन्हें भगवान गंभीरता पूर्वक देखते रहे, और जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने ही वाला था, तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति ही कई की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा मुनि जैसा महान ब्राह्मण एवं योगी भी घोर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरण कमलों पर अपराध किया था। अनुवाद को दोहराइए। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो, तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथा कथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। दुर्वासा मुनि महान योगी थे, बहुत बड़े विद्वान, तपस्वी, वैरागी, ब्राह्मण थे। फिर भी यद्यपि भगवान की दृष्टि में तपस्वी ब्राह्मण शुद्ध होते हैं, प्रिय होते हैं, फिर भी जब वो भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करते हैं तो भगवान इसे सहन नहीं करते हैं। अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्वासा मुनि वैष्णवों की महिमा न जानने के कारण और भक्ति से भलीभांति परिचित न होने के कारण अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में बहुत बड़ा अपराध कर बैठे, जो कि उनके लिए बहुत भारी साबित हुआ। भगवान का सुदर्शन चक्र उनका पीछा करने लगा और अपने जान को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे। दुर्वासा मुनि कहीं भी उनको कोई राहत नहीं मिली। जब भगवान के पास स्वयं आए, भगवान ने तो सबसे पहले उनको वैष्णवों का गुणगान सुनाया। तो हमने पिछले 6 श्लोकों में सुना था कि भगवान कृष्ण वैष्णवों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के लिए वैष्णव इतने क्यों प्रिय हैं। तो भगवान ने ये सारे बातें तो बता दी और उन्होंने सीधे से उपाय की बात नहीं की, सबसे पहले एक पृष्ठभूमि दे दी, एक बुनियाद, एक आधार बनाया। जब अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि आए, भगवान मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भगवान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं रक्षा करूंगा या नहीं करूंगा। उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि देखो मेरे महाभक्त कितने महान हैं, मेरे लिए कितने प्रिय हैं, कितने सद्गुणों से वो संपन्न हैं, इसलिए उन्होंने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं उनके नियंत्रण में सदैव रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे अपने भक्तों की। और दुर्वासा मुनि वहां राह देख रहे हैं कि भगवान का ये गुणगान समाप्त कब होगा, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे है। फिर अंततः भगवान ने ये 6 श्लोकों को बताने के बाद, अब सबसे पहला शब्द इस श्लोक में क्या है, उपायम। अब मैं उपाय बताऊंगा, परंतु उपाय समझने के पहले दुर्वासा मुनि को समझाना ये आवश्यक था कि भगवान का भक्त कौन होता है, कितना महान होता है। अन्यथा ऐसे ही जाके कहना, जाके क्षमा मांग लो, इसमें इतना वजन नहीं होता। दुर्वासा मुनि ठीक है अपने जान को बचाने के लिए कह कर भी देते, परंतु उनको पता नहीं चलता कि वास्तव में भगवान और भक्तों के बीच में संबंध क्या है, कितना गहरा है, कितना प्रेम पूर्ण है, कितना निकट का है। भगवान के भक्त भगवान के लिए निज जन माने जाते हैं, इसलिए हरि जन। आजकल हरि जन शब्द का तात्पर्य अलग हो गया, परंतु हरि जन मतलब जो हरि के जन है, हरि के शुद्ध भक्त है वो। तो अभी भगवान बता रहे हैं, उपायम कथयिष्यामि। तो हे दुर्वासा मुनि, मैं उपाय कथयिष्यामि, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बताने जा रहा हूं, तब तुम्हारे इस बहुत विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए हे विप्र, हे ब्राह्मण, श्रृणुष्व तत्, मेरी बातों को श्रृणुष्व, ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी समस्या में होते हैं ना, और किसी के पास जाते हैं समस्या का हल निकालने के लिए, तो अपनी समस्या तो हम बता देते हैं, भर 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 बोल देते हैं, और चाहते हैं कि समाधान तत्क्षण हो जाए, तुरंत हो जाए। परंतु समस्या का समाधान करने के लिए भी जो समाधान करने के लिए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें सुनाएं जिससे कि उस पीड़ित व्यक्ति के मन में एक विचारधारा उत्पन्न हो, जिसके द्वारा वो हल निकल सके। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं थोड़े अपने शब्द थोड़ा बढ़ा के कह रहा हूं, उन्होंने एक सूत्र रूप में अंग्रेजी में कहा था, मैं थोड़े से विस्तार में हिंदी में समझा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जब कोई समस्या होती है तो वो समस्या क्यों होती है, वो समस्या उत्पन्न होती है किसी एक चेतना के कारण, एक विचारधारा, एक मानसिकता के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि हम उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो वो जो हल है, वो जो उपाय है, वो एक ऐसे विचारधारा से उत्पन्न होना चाहिए, एक ऐसी मानसिकता से आनी चाहिए जो कि पहले वाले विचारधारा से श्रेष्ठ हो, ऊपर हो, उससे ऊंचा हो। उसी मानसिकता से यदि हम हल ढूंढना चाहें जिस मानसिकता के कारण वो समस्या उत्पन्न हुई थी, तो फिर मामला और विकट हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हम तुरंत रजोगुण में या तमोगुण में प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं कि कोई कुछ कहता है जो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे विरोध में कुछ कहता है, हमारा अपमान करता है, तो वो जो अपमान करने वाला व्यक्ति है वो एक विचारधारा का व्यक्ति है, कम से कम इस क्षण से तो उस विचारधारा से ग्रस्त है वो, और उस मानसिकता के से ग्रस्त होकर वो कुछ कह दे रहा है, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे किया, कुछ भी भला बुरा बोल दिया। जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी क्या होता है, इसका समाधान निकलना चाहिए। कैसे? हम भी वो शेर तो हम सवा शेर, तो हम भी दुगना कुछ बोल देंगे उसको। तो तुरंत हमारे मन में ये उपाय सूझता है कि उसको हम ऐसे सुना देंगे कि बस अगली बार ऐसे नहीं बोलेगा। परंतु वो जो उपाय है वो उसी मानसिकता से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मामला सुलझ नहीं जाएगा, परिस्थिति सुधर नहीं जाएगी और बिगड़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाएं और सोचें कि भाई ये कुछ भला बुरा कह रहा है हमारे बारे में, अब मैं उसकी तरह क्यों बनूं? मैं भी उसकी तरह नीचे जाकर मैं भी मैं तू मैं बद्ध हो जाऊं तो मेरा ही नुकसान होगा। उसका तो होगा सो हो ही रहा है, परंतु मेरा भी हो जाएगा नुकसान। तो मैं इस जटिल परिस्थिति में अटक क्यों जाऊं? फिर याद करना चाहिए हमने भगवद गीता में क्या पढ़ा था, राधा गोकुल आनंद मंदिर में आके हमने क्या सुना था। तो फिर हम सोच सकते हैं ठीक है समाधान निकालेंगे इस बात का, लेकिन थोड़े हल्के से ध्यान से। जोश से ज्यादा महत्वपूर्ण है होश। देखो जोश में उत्तर देना नहीं चाहिए, होश। होश ठिकाने रहेगी सारे समाधान ठीक हो, सारे समस्याएं ठीक हो जाएंगी। परंतु जब होश नहीं रहता केवल जोश रहता है तो क्या होता है, समस्या बढ़ जाती है। हम सब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों का अनुभव कर चुके हैं। आप में बताइए कि आप में से कितने भक्तों को अनुभव है कि किसी ने आपको कुछ कहा या आपके प्रति कुछ किया और तुरंत आपने उसी समय कुछ दुगना जवाब दे दिया। ऐसे हाथ ऊपर कीजिए यदि आपके जीवन में ऐसे कभी घटा है तो। स्वाभाविक है, देखिए कितने भक्तों ने ऊपर हाथ किया, अन्यों ने जिन्होंने नहीं किया शायद भूल गए हैं। क्योंकि इतनी सारी घटनाएं कभी हो जाती है ना, तो हो जाता है कभी कभी कुछ अचानक से कह देता है, झट करके हम कुछ बोल डालते हैं। रेलगाड़ी में जाते समय कितने सारे चीजें होती है, कोई रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, घर में भी शांति से बैठे हैं, वो फोन आ जाते हैं किसी, क्या करें। तो ये संसार ऐसे है। तो इसलिए एक किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए, उपाय निकालने के लिए हमें पहले मानसिकता सही बनानी चाहिए, फिर वो समस्या का हल निकल जाएगा। मानसिकता की तैयारी हम नहीं करेंगे, उसका परिवर्तन नहीं करेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने सबसे पहले दुर्वासा मुनि की मानसिकता तैयार कर ली, एक बुनियाद बनाई और उनको बताया कि देखो तुम्हें पता है क्या कि तुमने क्या किया है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा देखता है 500 रुपए का नोट कहीं पड़ा है। अब छोटे बच्चे को क्या मालूम ये 500 रुपए का मूल्य क्या है, वो सोचता है ये छोटा सा कागज है, जैसे दूसरे कागज के लेकर फाड़ता है, इसको भी लेकर फाड़ दिया। अब यदि हम गुस्सा हो जाएंगे, तुमने 500 रुपए का नोट फाड़ दिया, फटाफट हम मारने लगे। एक बार अब जब मायापुर में थे, मुझे याद है हम जा रहे थे, आसपास के लोग आते हैं ना कभी गांव के इधर, वो अपने बच्चे साथ में ले जा रहे थे, बच्चे ने कुछ किया तो ऐसे मारा वहां पे बच्चे को, मैं तो हैरान हो गया। हम लोग दो चार भक्त थे, जाके उनको ऐसे डांटा फिर हम लोगों ने कि ऐसे मारते हैं क्या बच्चों को, बच्चा तो बच्चा है वो तो कुछ करेगा। अरे तुम तो बड़े हो, तुम्हारी बुद्धि तो सही है, तुमको उसकी तरह नहीं बर्ताव करना चाहिए, तुम्हारा बर्ताव बच्चे से बुरा है। बच्चे अपनी आयु के अनुसार कार्य कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी आयु के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हारी आयु तो 2-3 साल की नहीं है। तो बच्चा यदि फाड़ देता है उस नोट को, तो सबसे पहले ये नोट वहां रखना नहीं चाहिए था उसके सामने, और उसने फाड़ दिया तो फाड़ दिया, अभी क्या किया जा सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे से उसको समझाना चाहिए, उसकी मानसिकता भी ठीक करनी चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए कि देखो ये मूल्यवान है, इसको नहीं फाड़ना चाहिए। तो जब बच्चा उसका उस नोट का मूल्य ही नहीं जानता, ये क्या वस्तु है वास्तव में नहीं जानता, तो फिर वो फाड़ेगा। तो दुर्वासा मुनि बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान थे, योगी थे, तपस्वी थे, सब कुछ थे, परंतु जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त नहीं थे। इसलिए भक्त की महिमा की जानकारी नहीं थी। तो भगवान ने सोचा सबसे पहले मुझे उनको ये बताना है कि भक्त कौन होता है, ये पहले जान लो, भक्त कौन है कौन नहीं है, और सच्चा भक्त कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और वो मेरे लिए अति प्रिय हैं। इसलिए इनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए किसी को। तो भगवान दुर्वासा मुनि के द्वारा सारे दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, खबरदार, वैसे भी इधर उधर अन्यों से करोगे तो उसके परिणाम भी मिल जाएंगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार, साधारण कर्म सिद्धांत के अनुसार भी हम जब किसी के ऊपर हिंसा करते हैं, कोई अन्याय करते हैं, तो वही हिंसा वही अन्याय हमारे ऊपर लौट के आएगा। जैसे करनी वैसे भरने, ऐसे तो साधारण भौतिक जीवन में भी होता है, कर्म सिद्धांत लागू होता है। परंतु जब यही चीजें हम भगवान के प्रिय भक्तों के ऊपर करते हैं, तो इसका परिणाम और भी भयंकर होता है। इसलिए भगवान दुर्वासा मुनि को बताना चाहते थे, ये मत सोचिए कि आप बड़े ब्राह्मण हैं, आपने इतनी तपस्या की है, आपने योग सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, इसलिए आप वैष्णव अपराध के परिणामों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि बड़े बड़े देवता भी हैं, यदि उन्होंने भी भक्तों के प्रति कोई अपराध किया तो इनका दुष्परिणाम उनको भी प्राप्त होगा। कोई इससे छूट नहीं सकता है। तो उनके द्वारा, दुर्वासा मुनि के द्वारा, हम सबको बताना चाहते हैं कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। अभी साधारण दुनिया में भी हम देखते हैं कि सड़क पर जाते जाते कभी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तू मैं हो जाता है। लेकिन एक आदमी का झगड़ा दूसरे आदमी से हो जाता है जो किसी बड़े आदमी का बेटा है, मंत्री है, राष्ट्रपति का बेटा है, तो फिर उसको पता जा रही है मैंने क्या कर दिया, अब तो अभी कठिनाई होने वाली है मुझे। तो उसी प्रकार से भक्त के प्रति कुछ करने के पहले हमें सोचना चाहिए, यार ये तो बहुत बड़े आदमी के बच्चे हैं। सबसे बड़े आदमी कौन है? सबसे बड़े आदमी भगवान। इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। तो फिर बता के अब मानसिकता तैयार हो गई दुर्वासा मुनि की, उनको ज्ञान भी दे दिया और थोड़ा अनुभव भी हल्का सा उनको दे दिया। सुदर्शन चक्र ने आक्रमण नहीं किया, प्रहार नहीं किया। यदि सुदर्शन चक्र चाहते तो प्रहार करके दुर्वासा मुनि का शरीर नष्ट भी कर सकते थे, जानबूझकर अपनी गति को उतना ही बनाया जितना कि दुर्वासा मुनि की पीठ के निकट निकट निकट। जिस गति से दुर्वासा मुनि दौड़ रहे थे, उतने ही गति से पीछे 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 सुदर्शन चक्र जा रहे थे। सुदर्शन चक्र चाहते तो अपनी गति और बहुत बढ़ा के संहार कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे दुर्वासा मुनि के शरीर को, परंतु उनको केवल तैयारी करनी थी। इस अवस्था में दुर्वासा मुनि को लाना था कि आगे जाके वो अंततः भगवान के शरण में आ जाएं और उनको अच्छा उपदेश अंत में मिल जाए। तो अभी भगवान कहते हैं, उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्वतत। अब मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, हे दुर्वासा मुनि, ध्यान से सुनो, अयम ये जो तुमने कार्य किया, कौन सा कार्य किया, जो अम्बरीश महाराज के प्रति इतना अपमान किया, ही आत्म अभिचार ते। तुमने वैसे देखा जाए तो अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपमान किया, परंतु उनके ईर्ष्या से नहीं, स्वतः तुम्हारे स्वयं की ईर्ष्या से तुमने ये किया है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, तुम्हारे लिए ही ये हानिकारक साबित हो रहा है। अयम ही आत्म अभिचार रहते यतस्तम, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, या ही माचरम, इसलिए या ही मतलब जाओ उनके पास, माचरम, चिरम मतलब आराम से, देर से, लंबे समय के बाद, और मा मतलब नहीं, लंबे समय के बाद नहीं जाना। तो भगवान कहना चाहते हैं कि तुरंत जाओ। प्रभुपाद जी तात्पर्य कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां पर, एक क्षण की प्रतीक्षा भी नहीं करना, तुरंत उनके पास चले जाना, अम्बरीश महाराज के पास, और क्षमा याचना करना। वही मात्र तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की पात्रता मुझ में भी नहीं है, मेरे प्रति अपराध किया होता प्रत्यक्ष मैं क्षमा कर देता हूं, परंतु तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो उन्हीं के पास चले जाओ। और फिर वो कहते हैं, साधुषु मतलब साधुओं के प्रति, साधु कौन, जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रहितम तेजः, तेज मतलब कोई शक्ति, प्रहितः मतलब प्रयुक्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शक्ति का प्रयोग किसी भक्त को हानि पहुंचाने के लिए करता है तो क्या होता है, प्रहर्त हो, जो करता है, जो करने वाला है ये अन्याय, ये कार्य, कुरुते अशिवम, उसके लिए यही अमंगल बन जाता है, हानि उसी को पहुंचती है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की तरह हो गया ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बताते हैं भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब वैष्णव कहीं भी बन जाता है या कहीं भी रहता है तो उसके बहुत सारे शत्रु निकल आते हैं। भगवान का भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, परंतु अन्य लोग वैष्णव को शत्रु मानते हैं, और कभी कभी ये परिवारों में भी देखा जाता है। हो सकता है आपके परिवारों में मतलब बाहरी रिश्तेदारों में इत्यादि ऐसे हुआ हो। कितने ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जहां पर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसकी पत्नी विरोध करती है, घर में युद्ध हो जाता है, कभी पत्नी भक्त बन जाती है तो पति विरोध करता है और घर में युद्ध हो जाता है, कभी माता पिता बनते हैं तो बच्चे विरोध करते हैं, कभी माता पिता विरोध करते हैं, कभी कभी रिश्तेदार, कभी मित्र विरोध करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं। तो ये साधारण सी बात है, दुनिया में अनादि काल से देखा जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। और एक उदाहरण जो प्रभुपाद जी यहां दे रहे हैं वो प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे, फिर भी अपने 5 साल के मासूम बच्चे के प्रति भी हिरण्यकश्यप के हृदय में इतनी ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि अपने बच्चे के प्रति बहुत अत्याचार किया, यहां तक कि जान से मारने का भी प्रयास किया। हिरण्यकश्यप असफल हुए, क्यों, क्योंकि साधुषु प्रहितम तेजः प्रहर्तुः कुरुते अशिवम्, क्योंकि जो भी हम हानि पहुंचाना चाहते हैं भक्त को, भक्त को हानि नहीं पहुंचेगी, अपने ऊपर ही आएगी स्वयं। तो ये बहुत से उदाहरण ऐसे देखे जाते हैं। हरिदास ठाकुर का नाम तो आप सबने सुना है, नामाचार्य, नाम के आचार्य, अर्थात जब वो नाम लेते थे तो इतना आदर्श था उनका उदाहरण कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका नाम होना चाहिए नामाचार्य, हरि नाम लेने के आचार्य आप हैं। यद्यपि वो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी शुद्ध भक्त थे कृष्ण भगवान के। तो एक बार वो सप्तग्राम में आए थे, हिरण्यम मजुमदार के घर में आए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का घर भी था, तो उन्होंने एक प्रवचन दिया वहां पर। सारे आसपास के लोगों को बुलाया कि हमारे घर में एक महान भक्त आए हैं भगवान कृष्ण के, तो उनकी कथा होने जा रही है, तो आप आइए। तो हरिदास ठाकुर ने कथा कर ली और कथा में उन्होंने कहा कि वैसे भगवान का नाम जप करने का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है कि हम मुक्ति पाएं संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से, ये तो एक आनुषंगिक एक परिणाम है, मतलब ये अपने आप हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो अपने आप ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको मुक्ति भी मिल जाती है। अरे शुद्ध नाम की बात तो दूर है, नाम के हरि नाम के आभास मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो वहां पर सारे बैठे हुए भक्तों को बहुत अच्छा लगा, परंतु एक ब्राह्मण वहां बैठा था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा, खड़ा हो गया, वो तरुण था, सुंदर था, घमंडी था, विद्वान था, तथा कथित विद्वान, उसने कह लगा, हे सज्जनों जरा सुनिए ये क्या बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अनेक जन्मों की तपस्या के बाद भी विरला ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाता है, परंतु ये सज्जन कह रहे हैं कि हरि नाम लेने के आभास मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ये तो संभव है ही नहीं। यदि हरि नाम के आभास से मुक्ति नहीं मिलेगी तो हरिदास ठाकुर को अपना नाक काट देना चाहिए। अब जब ऐसी बातें सुनी तो वहां सारे लोग, बड़े हिरण्य मजुमदार इत्यादि सब क्रोधित हो गए, उसको तुरंत उसकी भर्त्सना कर ली, उसको बाहर निकाल दिया, चले जाओ यहां से, उनको घर की नौकरी से भी निकाल दिया, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। हरिदास ठाकुर ने उसको अपमान नहीं माना, हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो ये तो शास्त्रों का निष्कर्ष है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है शुद्ध भाव से तो पापों का क्षय और मुक्ति का उदय अपने आप हो जाता है, और भगवान के नाम लेने का सही उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं था, तब उसको बाहर निकाल दिया गया सभा से कि तुमने हमारे ऐसे महान अतिथि का अपमान किया है, इतना बड़ा अपराध तुमने किया। तो बहुत ही शीघ्र क्या हुआ, उसी गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग के कारण जिस नाक, सुंदर नाक के प्रति उसका इतना घमंड था, वो नाक ही गिर गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव के प्रति अपराध करने का परिणाम इस तरह का होता है, और इसका उपाय एक ही रहता है कि उसी व्यक्ति के पास जाके हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए भगवान ने यहां पर क्या कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हें जिनके प्रति तुमने अपराध किया है उनके पास ही तुम्हें जाना होगा। और एक ऐसी कथा जो याद आ रही है वो ये है कि एक बार जब हरिदास ठाकुर की बात आई तो हरिदास ठाकुर बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत से लोग उनके पास आके उनके शरण लेने लगे, उनका सम्मान करने लगे। तो जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं उनको ये सहन नहीं होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान हो, वो चाहते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा मेरे लिए ही हो, अन्यों के लिए न हो। और खास करके जब वो व्यक्ति भगवान का भक्त है और उसे इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, तो उनको सहन नहीं हुआ। तो उसने एक वेश्या को बुलाया और कहा कि जाके इनका इनकी बदनामी करो, इनको जानबूझकर इनका पतन करवाओ ताकि इनका इनकी बदनामी हो जाए, और जब बदनामी हो जाएगी तो उनका सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। तो वेश्या वहां पर गई, परंतु हरिदास ठाकुर के शुद्ध भक्ति के कारण वही शुद्ध भक्त बन गई। और हरिदास ठाकुर के सामने उस वेश्या ने कहा कि मैं आपको सच बताना चाहती हूं कि रामचंद्र खान नाम के जमींदार ने मुझे जानबूझकर आपके पास भेजा है, ये उनका षड्यंत्र है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में पहले ही से ही जानता था, परंतु केवल तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, नहीं तो मैंने तो योजना बनाई थी कि मैं यहाँ से कब का चले जाऊँगा। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो, तुलसी के सामने बैठ के तुम जप कर रही हो और करोगी, तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हरिदास ठाकुर तो वहाँ से निकल गए, और जो वो वेश्या थी यहाँ पर बैठी, वो जप करने लगी, और करते 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 वो भी महान संत बन गई, साध्वी बन गई, और सारे प्रांत के लोग उनके आके नमस्कार करते थे, वो भी शुद्ध भक्त बन गई। परंतु उधर रामचंद्र खान को क्या हुआ? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में अपराध करने के कारण उन्होंने एक भयंकर कांटों वाले वृक्ष का बीज बोया था, जो आगे चल के उनको न केवल चुभने वाला था परंतु उनको नष्ट करने वाला था। तो ये एक अपराध करने के कारण हुआ क्या? रामचंद्र खान के हृदय में भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने की प्रवृत्ति तीव्र हो गई, और बार बार करते रहे, लंबे समय तक करते रहे। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एक बार वहां पर नित्यानंद प्रभु आए, और वहां पे घर के बाहर एक दुर्गा मंडप हुआ करता, ऐसे बंगाल में हुआ करता था पहले गांव में, क्योंकि उस भाग में दुर्गा देवी की उपासना बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है। तो वहां पर दुर्गा मंडप में बैठे नित्यानंद प्रभु। रामचंद्र खान को जब ये पता चला कि मेरे घर के दुर्गा मंडप में आके ये वैष्णव बैठे हैं, वो तो नहीं जानते थे कि ये स्वयं बलराम है, वो उनको मानते थे कि ये कोई भक्त है, कृष्ण भक्त है। तो उन्होंने कहा किसी अपने सेवक से कि जाके उनको कहो कि यहाँ मत रहो, किसी एक ग्वाले के गौशाला में जाके रहो, तुम यहाँ पे मत रहना। तो नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा हाँ ये सही बात है, ये मेरे लिए, ये मेरे निवास करने के लिए स्थान नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए योग्य निवास स्थान है जो एक गौ हत्या करने वाला है, मांसाहारी है। और वहां से निकल गए नित्यानंद प्रभु। उसके बाद रामचंद्र खान ने उस सारे जगह को शुद्ध करने की दृष्टि से गौमूत्र पानी से धुलवाया, फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। देखिए कितना भयंकर अपराध, पहले तो नित्यानंद प्रभु को अपने घर से बाहर करने का अपराध, उसके बाद उन्होंने उसी स्थान को साफ करना चाहा कि ये मेरा स्थान अशुद्ध हो गया है, इसको मैं पवित्र करूंगा। और इसके बाद हुआ क्या? अभी ये पूंजी जो है, अपराध की पूंजी इतनी बढ़ गई थी कि अब बहुत कुछ भयंकर होना था रामचंद्रपुरी के जीवन में। ऐसा नहीं है कि हर बार जब हम अपराध करते हैं तो तुरंत उसका उत्तर मिलता है, कभी कभी भगवान राहत देखते हैं कि अपराधों की पूंजी जब बढ़ जाती है ना पर्याप्त मात्रा में, फिर छप्पड़ फाड़ के कष्ट दे देते हैं भगवान। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक अपराध किया, कुछ परिणाम नहीं हुआ, तो ठीक है चलो और भी कर लेते हैं अपराध। एक 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 छोटे 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 अपराध की गिनती भगवान करते हैं। और फिर क्या हुआ, ये जो जमींदार था रामचंद्र खान, वो टैक्स या कर बचाता था, चोरी करता था कर का। जो वहाँ का मुसलमान सुल्तान था उसको कर सही ढंग से नहीं देता था, वो कर चोरी करके अपने जेब में डालता था। तो वो सुल्तान का प्रतिनिधि वहाँ आया, जो भी स्वयं वो भी मुसलमान था, तो उसने आके दुर्गा मंडप में अपना निवास बनाया और वहाँ पे उसने गोहत्या की और गोमांस का भक्षण किया। और जितना भी धन आदि था रामचंद्र खान के घर में वो सब ले लिया, सारे गांव को लूट लिया और उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका धन है, उनके परिवारों को, सबको नष्ट कर डाला उन्होंने। इसलिए कविराज गोस्वामी बताते हैं, महान तेरा अपमान जे देशे ग्रामे होए, एक जनार देशे सब देशे उड़ जाए। कि जब कोई महंत, कोई महान वैष्णव होता है जिस गांव में, जिस शहर में, जिस प्रांत में उनका अपमान होता है, तो एक व्यक्ति के गलती के कारण वो सारा भाग जो है, सारा प्रांत नष्ट हो जाता है। तो रामचंद्र खान एक व्यक्ति के ऐसे भयंकर वैष्णव अपराधों के कारण उनका सारा गांव नष्ट हो गया, पूरा तहस नहस हो गया। कई दिनों तक वहां पर वो सुल्तान का प्रतिनिधि रहा, पूरे तहस नहस करने के बाद फिर वहां से वो चला गया। तो देखिए ऐसे इस तरह के परिणाम होते हैं, तो धीरे धीरे से आते हैं। तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हम धीरे धीरे से करेंगे, नहीं, बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। क्योंकि एक बार हम सोचेंगे कि चलो भाई ये तो हरिदास ठाकुर है और ये नित्यानंद प्रभु है, ये इतने बड़े बड़े भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान बलराम हैं, हम तो हमारे बीच में जो भक्त रहते हैं उनके प्रति कभी अपराध कर देते हैं ना, ये थोड़ी ऊंचे भक्त हैं, ये तो हमारे जैसे साधारण भक्त हैं, तो इसलिए वो परिणाम नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर ये है कि हाँ, जितने ऊंचे, जितने शुद्ध भक्त होते हैं तो उतनी ही अधिक समस्या होती है जब उनके प्रति अपराध होता है। फिर भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई नया भक्त है इसलिए कोई परिणाम नहीं होगा, अवश्य होगा। और दूसरी बात यह है कि एक बार हमने अपराध करना शुरू कर दिया तो रामचंद्र खान के हृदय में जैसे हुआ वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। एक अपराध करने की प्रवृत्ति बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी, फिर स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल ही जाएगा कुछ न कुछ अन्य भक्तों के प्रति, भला बुरा कहने की आदत बन जाएगी। तो ये आदत बहुत बुरी आदत है, अन्य बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, परंतु ये आदत सबसे भयंकर है। भले अन्य आदतों से ग्रस्त हम हो, हरिनाम आदि से हम मुक्त हो सकते हैं उनसे, परंतु वैष्णव अपराध करने की आदत यदि पड़ जाए हमें तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। इसलिए हमें बहुत बच के रहना चाहिए भक्तों के समाज में। कलयुग में विशेष करके लोग बहुत हल्के से अपने जबान का प्रयोग करते हैं, बस झटपट झटपट किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई सबूत के, बिना कोई और सबूत हो भी, फिर भी बस इधर उधर कुछ कह देते हैं। तो बाहर की दुनिया भी ऐसे चल रहा है। आप समाचार पत्र खोलिए, मत खोलिए अच्छा है, लेकिन फिर भी खोले भी तो सब जगह एक कोई दूसरे की निंदा करता है, दूसरा तीसरे की निंदा करता है। ये सारे जगत में लोग निंदा में पड़े हुए, निंदा के सागर में पड़े हुए हैं। इसलिए आदत से, एक प्रवृत्ति जो है उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमारे मुंह से निकल गया। कितने बार जब कोई हमें से गलती करते हैं, हम उन भक्तों के पास जाते हैं, हाँ प्रभु मुंह से निकल गया, क्या करूं, ऐसे हो जाता है ना, मुंह से निकल गया। क्यों निकल जाता है ऐसे? क्योंकि वो आदत पड़ गई है, कर करके फट निकल जाता है मुंह से। इसलिए अन्यों का बुराई करना, अन्यों के बारे में कुछ भला बुरा कह देना निकल ही आता है, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। आगे भगवान ने जो कहा है कि जिस व्यक्ति के प्रति हमने भक्त के प्रति हमारा अपराध हुआ है, उसके पास जाके हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ऐसी एक घटना याद आ रही है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में रहते थे, संकीर्तन किया करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में रात भर, और दरवाजे बंद रहा करते थे, क्योंकि वो अन्यों को जो भक्त नहीं थे अंदर ले आना नहीं चाहते थे। तो पास पास में रहने वाले लोग, जो मोहल्ले के लोग थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था, अरे ये सब श्रीवास ठाकुर ने सब हमारी नींद खराब कर दी, रात को ये हरे कृष्ण कह रहे हैं, कीर्तन करते हैं, शायद इनको बहुत भूख लगती है, भूख के मारे चिल्लाते हैं हरे कृष्ण, और इस तरह से भगवान को भी वो विचलित करेंगे। और अब देखो सुल्तान इसकी बात सुनेगा, वो यहाँ पे सैनिक भेजेगा और हमारे लिए कितना कष्ट हो जाएगा। तो उनमें से एक ऐसा ईर्ष्यालु भक्त था, भक्त नहीं एक व्यक्ति था, जिसका नाम था गोपाल चापाल। तो उसने क्या किया कि उसने रात को छुपकर हरिदास श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, जो तामसिक आराधना के जो पदार्थ होते हैं, सामग्री होते हैं, जैसे कोई लाल चंदन है, उसके पास मांस है और शराब है, ये सब चीजें रखी। तो जब सुबह उठे हरिदास श्रीवास ठाकुर, दरवाजा खोला और देखा कि अरे ये सब शराब मांस ये वो सब पड़ा हुआ है, तो उनको तुरंत पता चला कि ये किसी का षड्यंत्र है मेरा नाम खराब करने के लिए। तो जानबूझकर उन्होंने सब पड़ोसियों के बुलाया, अरे देखो देखो आओ, मैं अपने आप को बड़ा कृष्ण भक्त बताता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी सही पहचान क्या है, मैं छुप छुप के ये काली चंडी की पूजा करता हूँ, देखो देखो मेरे घर के सामने क्या है। तो जो सज्जन लोग थे उनको पता चल गया कि ये तो किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम है। उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति ने आके वो सब कुछ निकाल दिया, वहाँ सब साफ कर दिया, हरिदास ठाकुर श्रीवास ठाकुर से कहा आप बुरा मत मानिए, कोई ऐसे पागल व्यक्ति होते हैं यहाँ पर। उधर गोपाल चापाल को भी कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग जब हो गया तो आप तो जानते हैं कि ये संक्रामक बीमारी है, संक्रामक अर्थात जो फैलती है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक, जैसे कोविड भी ऐसे ही है ना, संक्रामक है, इसलिए सब बेड डालना पड़ता है। तो कुष्ठ रोग हो गया, जब वो किसी एकांत स्थान में जाके बैठना था, वीरान स्थान में, क्योंकि घर पे बैठते तो सारे लोग उनको भी हो जाता, और वहां पे इतनी पीड़ा हुई, इतना दुख हुआ गोपाल चापाल को कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। और फिर वहां बहुत पछताने लगा कि अरे अरे मैंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त के प्रति मैंने अपराध किया और इसका परिणाम ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वहां उनके घर उस स्थान से जा रहे थे, तो गोपाल चापाल ने जोर से उनको पूछा कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध मेरे प्रति हो गया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, संन्यास नहीं लिया था उन्होंने उस समय तक। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति ऐसे महान कृष्ण भक्तों के चरण कमलों में अपराध करते हैं उनको एक कोटि जन्म तक नारकीय दुख झेलने पड़ेंगे, इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो महाप्रभु ने उनको ठुकरा दिया और वो आगे चलते गए। फिर अनेक वर्षों बाद जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, संन्यास लेने के बाद एक बार फिर वहां पर आए थे वो, तो उस समय फिर से गोपाल चापाल ने उनको देखा, संकीर्तन वहां से भक्त करते हुए जा रहे थे। तो गोपाल चापाल ने आके जब क्षमा याचना की तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, देखो तुम श्रीवास ठाकुर के पास जाओ, उनके चरण कमलों में जाके जब तक क्षमा याचना नहीं करोगे तब तक तुम्हारी समस्या से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो फिर गोपाल चापाल चले गए। श्रीवास ठाकुर ने तो उसको अपराध माना ही नहीं था और श्रीवास ठाकुर को बड़ा लगा, अरे ये क्यों मेरे साथ कर रहे हो, मैंने क्यों क्षमा मांग रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो श्रीवास ठाकुर ने आराम से क्षमा कर दिया उनको। फिर चापाल गोपाल की समस्या खत्म हो गई। इससे हम जान सकते हैं कि जब किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो उसी के पास जाके क्षमा याचना करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि जब हम किसी वैष्णव की अनुकूल भाव से सेवा करते हैं तो वो सेवा की जो पूंजी है वो बढ़ते रहती है, बढ़ते 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 हुए ये हमारा इससे भला होता है, हमारा उद्धार हो जाता है। जैसे ईश्वरपुरी, वो अपने गुरु महाराज श्रील माधवेंद्रपुरी की ऐसी सेवा करते थे अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक, क्योंकि बुढ़ापे के समय वो लेटे रहे बिस्तर पे। आप तो जानते हैं कि व्यक्ति जब अंतिम समय में बिस्तर में लेटा हुआ होता है तो सब कुछ करना पड़ता है, हर तरह की सेवा करनी पड़ती है। तो ईश्वरपुरी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, फिर भी उन्होंने अपने गुरु महाराज की शारीरिक सेवा की, मलमूत्र साफ करना सब कुछ उन्होंने किया। और ये सेवा करते करते अंत में माधवेंद्र पुरी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण प्रेम के सागर बन जाओगे। और वो बने माधवेंद्र पुरी के आशीर्वाद के कारण। दूसरी ओर और एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी, उन्होंने अपने गुरु महाराज माधवेंद्र पुरी की महिमा को नहीं जाना, उनकी महानता को नहीं पहचाना और अपने गुरु को ही उपदेश देने लगे थे, अरे आप ये क्यों इतना शोक कर रहे हैं कृष्ण के विरह में, आप तो ब्रह्मभूत होना आपको होना चाहिए, ब्रह्मभूत कोई ना शोक करता है ना हर्षित होता है, ऐसे उपदेश देने लगे ब्रह्म ज्ञान का। तो उनको श्राप मिला अपने गुरु महाराज का, तुम चले जाओ यहां से, मेरे सामने मत रहो। और इसके कारण रामचंद्रपुरी के हृदय में वैष्णवों की निंदा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, यहां तक कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं छोड़ा और वो भक्त नहीं रहे, केवल एक शुष्क ज्ञानी बन गए और भक्तों की निंदा करते रहे जहां भी वो जाते थे। तो ये अंतर देखिए, दोनों की पूंजी बढ़ी, ईश्वरपुरी की भी और रामचंद्रपुरी की भी, परंतु ईश्वरपुरी की पूंजी क्या थी, ये सच्चा धन था, आध्यात्मिक धन, भक्ति का धन। और रामचंद्रपुरी ने किस तरह की पूंजी कमाई, विष का, बहुत जहरीले परिणामों को भुगतना पड़ा रामचंद्रपुरी को। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से बड़े सम्मान से रहना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम मैत्री के भावना से सबके साथ में रहते हैं। भिन्न मत भी होते हैं, होंगे, लेकिन साथ में जो आपस में एक विश्वास है, एक प्रेम है, वो नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं, इनको भी हमें दिव्य मानना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं और शास्त्रों में भी ऐसे लिखा है। कभी कभी अनजाने में भी किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाते हैं, और जब हो जाते हैं और हमें पता चलता है तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह को हम वैष्णव प्रणाम कहते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव केवल दो चार पांच नहीं है, बहुत सारे वैष्णव हैं। सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमने आपके प्रति कभी कोई अपराध किया हो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अनजाने में भी किसी के प्रति अपराध हुआ हो क्षमस्व माम, क्षमा कर दीजिए। और एक छोटी सी लीला से हम प्रवचन समाप्त करेंगे। इस लीला का वर्णन नरहरि चक्रवर्ती द्वारा विरचित भक्ति रत्नाकर नाम के ग्रंथ में है। श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठ के अपने प्रिय स्थान में भगवान के लीलाओं के ऊपर स्मरण कर रहे थे। तो लीला में उन्होंने क्या देखा? लीला में ये देखा कि श्रीमती राधा रानी की सेवा उनकी सखियां अन्य गोपियां कर रही हैं, और श्री कृष्ण पीछे से आए। गोपियों ने देखा परंतु श्रीमती राधा रानी ने नहीं देखा। तो जब श्रृंगार हो गया और राधा रानी के मुंह के सामने एक दर्पण या आईना रखा, तो श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को देखा परंतु पीछे देखा कि उनके पीछे कृष्ण खड़े हैं। जब कृष्ण को अचानक देखा तो एकदम हड़बड़ा गई। जब हड़बड़ा गई तो सारे गोपियां हंसने लगी। जब गोपियां हंसने लगी तो रूप गोस्वामी जो ध्यान कर रहे थे इस लीला के ऊपर, वो भी हंस पड़े। अब दैव से हुआ ये कि उसी क्षण कृष्णदास नाम के एक वैष्णव रूप गोस्वामी को मिलने आए। अभी कृष्णदास पंगु थे, अर्थात लंगड़े थे, वो ठीक से चल नहीं पाते थे। तो जैसे ही वो रूप गोस्वामी के सामने आए, वैसे ही रूप गोस्वामी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो इनको क्या लगा कि अरे मेरे विकलांगता को देखकर रूप गोस्वामी हंस रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा और वो चले गए वहां से सीधे सनातन गोस्वामी के पास। उन्हें कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो रूप गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने ऐसे क्यों किया? तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, रूप तो है वो ऐसे अपराध कर ही नहीं सकते, वो ध्यान में बैठे थे और ध्यान में कोई भगवान की लीला ऐसी देखी इसलिए वो हंस पड़े, वो आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे। अच्छा ऐसे है, अरे रे रे, तो मैंने कितना बड़ा अपराध किया उनके प्रति, उनके प्रति ऐसा गलत मैंने समझ लिया, तो वो तो बहुत पश्चाताप कर रहे थे, अरे रे क्या हो गया। ठीक उस समय जब वो कृष्णदास वैष्णव वहां से चले गए, रूप गोस्वामी का ध्यान भंग हो गया। जब ध्यान भंग हो गया तो वो सोचने लगे कि अरे क्या कारण है ध्यान भंग हो रहा है, लीला स्मरण नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैंने किसी के प्रति अपराध किया है क्या? तो ऐसे हो सकता है कि जब मैं ध्यान में था कोई मेरे पास आया और मैंने उनका स्वागत नहीं किया और उसने बुरा मान लिया, चला गया, ऐसे भी हो सकता है? तो उन्होंने सोचा जाके मैं सनातन गोस्वामी जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे कुछ सलाह ले लूं। तो जैसे वहां जा रहे थे तो वहां से कृष्णदास निकल रहे थे, तो कृष्णदास ने आकर तुरंत दंडवत प्रणाम किया रूप गोस्वामी के चरणों में। कह रहे हे रूप गोस्वामी पाद, मुझे क्षमा कर दीजिए, एक गलत फहमी हो गई थी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा कि आप मेरे ऊपर हंस रहे थे, बल्कि जबकि आप ध्यान में बैठे थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो रूप गोस्वामी ने कहा अरे मेरे वजह से आपको बुरा लगा, तो उन्होंने दंडवत कर दिया उनको। दोनों प्रेमी भक्त थे और बहुत आसानी से मामला निपट गया। तो वैसे रूप गोस्वामी भगवान के पार्षद हैं, वो कैसे वैष्णव अपराध कर सकते हैं, परंतु भगवान ने ऐसी घटना करके हम सबको एक उपदेश दिया है कि हमें वैष्णव समाज में भी ऐसे रहते हुए ध्यान रखना चाहिए, किसी के ऊपर बिना वजह गुस्सा होना, किसी के ऊपर हंसना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी को देख के, वैष्णव को देख के प्रसन्न न होना, मन ही मन में उनको उनके बारे में कुछ भला बुरा सोचना, रे आ गया इधर इधर आ गए अभी वो क्यों आए इधर, ये भी अच्छा नहीं है। जब भक्त को देखते हैं प्रसन्न होना चाहिए। तो इस तरह से जितनी कृष्ण भावना भावित हम रहेंगे, उतने ही प्रेम से और विश्वास से, इतने अच्छे संबंध बनाकर हम आपस में भक्त समाज में रह सकेंगे। जितना हमारा नाम जप अच्छा होगा, श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, नम्रता हम बनाए रखेंगे, अन्यों को भी अपना प्रभु मान के चलेंगे, उस हद तक हमारा वैष्णव समाज, भक्तों का समाज बहुत सुखी रहेगा। मिलजुल कर हम बहुत कुछ सेवा कर पाएंगे भगवान कृष्ण की, और अनेक लोगों को कृष्ण भक्ति में भी ले आ पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान दुर्वासा मुनि को ये महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं कि जाओ अम्बरीश महाराज के पास जाके क्षमा याचना करो। जो व्यक्ति किसी शक्ति का उपयोग प्रयोग करता है भक्त के प्रति, वही शक्ति उसके प्रति लौट के आएगा और प्रयोक्ता का ही की ही हानि हो जाएगी। तो अब दुर्वासा मुनि को पता चल गया है, परंतु अभी तक भगवान का संदेश समाप्त नहीं हुआ है। तो अगले रविवार को हम सुनेंगे कि आगे चल के भगवान अब क्या कहेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण महाराज जी, माना कि भक्तों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे आदत होती है कि कोई आता है, भक्ति कर रहा है, लेकिन बहुत समय खराब करता है या इरिटेटिंग नेचर का होता है, और उसका स्वभाव है कि कुछ ऐसी ही बातें करते हैं, तो तब बहुत दुविधा हो जाती है कि क्या करना चाहिए, उसे कैसे
होता है, और कई बार को जाके कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। तो हमें थोड़े दक्षता से इस तरह से बात करना चाहिए कि उन्हें भी बुरा नहीं लगे, और हम जो महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं वो भी हम कर पाएं, हमारा समय भी खराब नहीं होगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो बहुत बुद्धिमान हो व्यवहार में भी, केवल हमारे भागवत में नहीं, पढ़ने में इत्यादि, परंतु व्यवहार में भी कैसे अन्यों के साथ में रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब भी, इन बातों में भी हमें थोड़ा दक्ष हो जाना चाहिए कि कैसे उनको समझाएं कि हम थोड़े व्यस्त हैं, हम बाद में कुछ बात कर लेंगे। तो इस तरह से समझा के उनको भेजना चाहिए, ठीक है। हाँ माइक,
हरे कृष्ण। मैं ऐसे पूछ ला तो महाराज, अभी कैसे भी अपराध का बात चली है, जब दुर्वासा मुनि ने अपनी कृत्या निकल के जटा से कृत्या बनाई, फिर वो कृत्या ने अम्बरीश महाराज के प्रति उनको ये करने के लिए प्रयास किया, फिर चक्र के उनको भस्म कर दिया, दुर्वासा मुनि की वो कृत्या जी थी वो आदेश पालन किया ना उन्होंने कि ये करना है, फिर वो कृत्या का अगला गति क्या हो गई, क्योंकि उन्होंने तो दुर्वासा मुनि की ऑर्डर फॉलो किया है उन्होंने कि ऐसे करो, फिर वो कृत्या का अगला ये क्या हो गया, क्योंकि वो सूक्ष्म अपराध था ना उनका, उन्होंने
किसी ने आदेश का पालन किया या किसी ने स्वेच्छा से किया, परंतु किया क्या, वैष्णव अपराध किया, इसलिए दंड सभी को मिलता है। जो भी भागीदार होता है इसमें, चाहे आदेश देने में या वो कृत्य करने में, सब लोग जिम्मेदार होते हैं, सबको परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ माइक,
हरे कृष्ण महाराज, उस इस श्लोक में जैसे नमो ब्राह्मण ने देवाय गो ब्राह्मण ने हिताय, तो भगवान ब्राह्मण के और गो के हिताय है, परंतु एक डाउट हो सकता है कि इस संदर्भ में, तो ऐसे होना चाहिए कि वैष्णव हिताय, तो एक किस संदर्भ में ये श्लोक?
जितने प्रिय ब्राह्मण है भगवान के लिए, उससे ज्यादा प्रिय वैष्णव है, परंतु ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, होना चाहिए कम से कम, और वैष्णव ही ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने भी बहुत विस्तार में समझाया है। साधारण वर्णाश्रम पद्धति में हाँ गो ब्राह्मण ही चाहे थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐसे ब्राह्मण संस्कृति में धीरे धीरे से भगवान की भक्ति हो सकती थी, परंतु वास्तव में वैष्णव है या भक्त है जो भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं, और वास्तव में ब्राह्मण वो होता है जो सात्विक होता है, जो नम्र होता है, किसी की निंदा नहीं करता। तो ब्राह्मण किसी भक्त की निंदा कैसे कर सकता है, तो ये एक बहुत प्रतिकूल बात है। ठीक है, हाँ अंतिम प्रश्न।
हरे कृष्ण, आप बता रहे थे कि भगवान के नाम का सही उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो जैसे एक साधक है, हम भगवान का नाम लेते हैं तो भौतिक इच्छाएं भी रहती हैं, शुद्ध उद्देश्य नहीं रह पाता, मतलब तो भौतिक इच्छाओं से कैसे छुटकारा पाना चाहिए?
भौतिक
इच्छाएं मन में रहती हैं, शुद्ध भावना के साथ वो भी रहते हैं, मतलब
बस जप करते करते कीर्तन करते करते सब ठीक हो जाएगा, क्रमशः सब होगा। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें धैर्य धीरज रखना चाहिए, उत्साहान निश्चयात धैर्यात, तो धीरज रखने से सब अपने समय में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा, तो आज के सुंदर प्रवचन के लिए महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं, तीन बार जोर से हरि बोल कह के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब स्वागत करेंगे उन भक्तों का जो आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं। तो जो भक्त यहाँ पे पहली बार उपस्थित है, उनसे निवेदन है कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, कृपया संकोच ना कीजिए। तो हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा गौर निताय से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। यह भी आशा करते हैं कि आज का दिवस आपके उज्जवल भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो। इस मंदिर में बहुत सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम, बड़े फेस्टिवल्स आदि कार्यक्रम होते हैं, जिसकी जानकारी आपको संतोष मित्राणी प्रभु देंगे। संतोष मित्राणी प्रभु पीछे खड़े हैं वहाँ पे प्रवेश द्वार के आगे। तो इन सूचनाओं के पश्चात आप सबसे निवेदन है कि आप संतोष मित्राणी प्रभु से मिलिए, वो आपको अधिक जानकारी देंगे। आइए नए भक्तों का स्वागत करेंगे, तीन बार जोर से हरि बोल कह के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया बैठ जाइए। वाघावड़े प्रचार केंद्र में हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह हरे कृष्ण महोत्सव वाघावड़े में कल से उसकी शुरुआत होगी, कल सोमवार 3 जनवरी से, और पहले दिन वहां पे नगर संकीर्तन और पालकी सोहला होगा, और अगले दिन यानी कि मंगलवार से लेकर रविवार तक 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक हर शाम संध्या को 7 बजे संकीर्तन, प्रवचन, आरती और प्रसाद होगा। अंतिम दिवस रविवार है और उस दिवस पे नाट्य लीला भी होगी। सो भक्तों से निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में वाघोड़े में जाके इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। यह सूचना है स्कूल प्रीचिंग के विषय पे, जो पाठशाला अलग अलग यहाँ पे बेलगाम शहर में है, तो वहाँ पे जाके हमारे मंदिर की ओर से भक्त वहाँ पे प्रचार करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को नीति मूल्यों की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस प्रचार कार्य के लिए बहुत सारे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्त यहाँ पे इस सेवा में हमें चाहिए। और यह प्रचार कार्य विद्यार्थियों को मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी सभी भाषाओं में हम करना चाहते हैं। तो जो भक्त इसके इच्छुक हैं वे सुनील माली प्रभु या नागराज प्रभु से आप मिल सकते हैं। और साथ ही हम पाठशालाओं में भगवद गीता का भी वितरण करना चाहते हैं। तो जो भक्त भगवद गीता का वितरण भी करना चाहते हैं तो वे भी नागराज प्रभु या सुनील माली प्रभु से मिल लीजिए। गोविंदा रेस्टोरेंट में एक असिस्टेंट कुक, खाना बनाने के लिए वहाँ पे एक कुक और एक वेटर की आवश्यकता है। तो आप गोपाल चंद्र प्रभु से आप मिल सकते हैं, जो भक्त इस सेवा के लिए इच्छुक हैं, और इस कार्य के लिए उनको एक तनख्वाह भी दी जाएगी। 3:15 बजे ब्राह्मण दीक्षित भक्तों की मीटिंग बुलाई गई है। मंदिर हॉल में ही यहाँ पे पीछे की तरफ मीटिंग होगी और इस मीटिंग में गोविंद जी प्रभु और आनंद प्रभु ये ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को मिलेंगे। जो भक्त भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए सूचना है कि आज 4 बजे प्रसाद के पश्चात 4 बजे उनकी एग्जाम होगी भगवद गीता के ऊपर, तो कृपया समय पे आप वहां पे उपस्थित रहिए। भगवद गीता के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है मराठी तथा कन्नड़ दोनों भाषाओं में, और यह 7 दिवसीय भगवद गीता का जो सेमिनार है वह 22 से लेकर 28 जनवरी तक होगा। तो कृपया तिथि को याद रखिए, जनवरी 22 से 28 तक। और यह प्रोग्राम, यह सेमिनार हर दिन शाम को 6:30 बजे होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन शुल्क है 200 रुपये। आप नीचे रिसेप्शन में आपका नाम वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आने वाले रविवार को प्रसादम बनाने की सेवा इस प्रकार से है। बिपिन पुरंदर सत्संग मंडल जिसके सेवक है माधवचरण प्रभु, और गोकाक प्रचार केंद्र जिसके सेवक है मोहन प्रभु। अगले रविवार को चप्पल सेवा है कुंज बिहारी सत्संग मंडल जिसके सेवक है विष्णु प्रसाद प्रभु। आज का प्रसाद इन भक्तों ने पुरस्कृत किया है, उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप आगे आइए। श्रीमती रेखा इनामदार माता जी, दूसरे भक्त है श्रीमान लक्ष्मण दासार प्रभु। आज रेखा इनामदार माता जी के 65 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस अवसर पर उन्होंने प्रसादम पुरस्कृत। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। श्री लक्ष्मण दासार प्रभु, लक्ष्मण दासार जी के उनका जो पुत्र है कृष्णा, उनका जन्म दिवस है और कुछ ही दिनों पहले उनकी शादी की सालगिरह भी थी, तो इस अवसर पे उन्होंने प्रसादम पुरस्कृत किया है। साथ ही श्याम बिहारी प्रभु, कृपया आप भी आइए। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। श्याम बिहारी प्रभु या उनके परिवार के कोई सदस्य, शायद कोई नहीं है, तो श्याम बिहारी प्रभु ने उनकी पत्नी सुरभि माता जी के जन्म दिवस पे आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है। और भक्त है श्रीमती मंगला चंद्रकांत, ये माता जी गोवा से है। मंगला माता जी आप यहाँ पे हैं, कृपया आप आगे आइए। श्रीमती मंगला चंद्रकांत माता जी और श्रीमान रामदास वेरनेकर प्रभु, तो रामदास वेरनेकर जिन्हें भी आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है, कुछ ही दिनों पहले उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई है जिसका नाम उन्होंने अदिति रखा है। श्याम बिहारी प्रभु और सुरभि माता जी की पुत्री यहाँ पे हैं, तो इनको भी धन्यवाद देते हैं तीन बार जोर से हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नगर संकीर्तन हो, माफ कीजिए, यहाँ पे संकीर्तन होगा और उसके पश्चात प्रसादम है, तो कृपया आप संकीर्तन के लिए खड़े हो सकते हैं।
रामूर्ति प्रभु जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गति